पृष्ठ 85 5 श्रव्य काव्य पद्य। श्रव्य काव्य के भेद। प्रबंध काव्य। बंद की दृष्टि से भारतीय समीक्षा पद्धति में श्रव्य काव्य के दो भेद किए गए हैं, एक प्रबंध और दूसरा मुक्तक। प्रबंध में पूर्वापर का तारतम्य होता है, मुक्तक में इस तारतम्य का अभाव रहता है। प्रबंध में छंद एक दूसरे से कथानक की श्रृंखला में बंधे रहते हैं, उनका क्रम उल्टा पलटा नहीं जा सकता, वे एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। मुक्तक छंद पारस्परिक बंधन से मुक्त होते हैं, वे स्वतः पूर्ण होते हैं, वे क्रम से रखे जा सकते हैं, किंतु एक छंद दूसरे से अपेक्षा नहीं करता। साहित्य दर्पण काल ने दो दो और तीन तीन छंदों के भी मुक्तक माने हैं। अंग्रेजी स्फुट कविताओं के स्टेंजा समूह और आजकल के गीत भी इसी प्रकार के संयुक्त मुक्तक गिने जाएंगे। प्रबंध काव्य के सामूहिक प्रभाव पर अधिक ध्यान रखा जाता है। मुक्तक में एक एक छंद की अलग अलग साज संभाल की जाती है। प्रबंध के भी दो भेद किए गए हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य का क्षेत्र विस्तृत होता है, उसमें जीवन की अनेक रूपता दिखाई जाती है। खंड काव्य में किसी एक ही घटना को मुख्यता दी जाती है और इस कारण उसमें एक देशीयता रहती है। गद्य के कथात्मक साहित्य और नाटक में भी महाकाव्य और खंड काव्य की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। कहानी और एकांकी कथा और नाट्य साहित्य में खंड काव्य के प्रतिरूप हैं। पाश्चात्य विभाग। महाकाव्य को अंग्रेजी में एपिक कहते हैं। पाश्चात्य समीक्षा में काव्य के दो मूल विभाग किए गए हैं, एक विषय प्रधान और दूसरा विषय प्रधान। विषय प्रधान काव्य को प्रगीत काव्य कहा गया है और विषय प्रधान का एपिक से तादात्म्य किया गया है। प्रगीत काव्य में भावना और गीत की प्रधानता रहती है। महाकाव्य में विवरण या प्रकथन की। तीसरा विभाग नाटक है, जिसमें अभिनय या प्रतिनिधित्व का प्राधान्य होता है। पृष्ठ 86। महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षण। महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों को हम संक्षेप में इस प्रकार बता सकते हैं। एक, यह सर्गों में बंधा हुआ होता है। दो, इसमें एक नायक रहता है जो देवता या उत्तम वंश का धीरोदात्त गुणों से समन्वित पुरुष होता है। इसमें एक वंश के बहुत से राजा भी हो सकते हैं, जैसे कि रघुवंश में। तीन, श्रृंगार वीर और शांत रसों में से कोई एक रस अंगी रूप में रहता है। नाटक की सब संध्या होती है। चार, इसका वृत्तांत इतिहास प्रसिद्ध होता है या सज्जनाश्रित। पाँच, इसमें मंगलाचरण और वस्त्र निर्देश होता है। छह, कहीं कहीं दुष्टों की निंदा और सज्जनों का गुण कीर्तन रहता है, जैसे कि रामचरितमानस में। सात, एक सर्ग में ही छंद रहता है और अंत में वह बदल जाता है। यह नियम शिथिल भी हो सकता है, जैसे कि रामचंद्रिका में। प्रवाह के लिए छंद की एकता प्रवांछनीय है। सर्ग के अंत में अगले सर्ग की सूचना रहती है। कम से कम आठ सर्ग होने आवश्यक हैं। आठ, इसमें संध्या सूर्य चंद्रमा रात्रि प्रदोष अंधकार दिन प्रातःकाल मध्यान्ह आखेर पर्वत ऋतु वन समुद्र संग्राम यात्रा अभ्युदय आदि विषयों का वर्णन रहता है। भारतीय साहित्य में विशेषकर प्राकृत में चरित काव्य भी हुआ करते थे। इस प्रकार के काव्य में कला के अपेक्षा चरित्र और कथानक की महत्ता रहती थी। संस्कृत में अश्वघोष का बुद्ध चरित इसी प्रकार का काव्य है। अर्धमागधी प्राकृत में विमल सूरी कृत पौनचर्यु प्राकृत भाषा का सर्वप्रथम चरित काव्य है और श्री रामचंद्र जी के जीवन में संबंध रखता है, किंतु इसका चित्रण जैन धर्म के दृष्टिकोण से हुआ है। कुमारपाल चरित भविष्यदत्त कथा यशोधरा चरित इसी प्रकार के ग्रंथ हैं। रामचरितमानस में आदर्श तो चरित्र का ही लिया गया है, किंतु उसमें कला का पर्याप्त पर समावेश हो जाने से इसकी गणना महाकाव्यों में ही होती है। पाश्चात्य मान से महाकाव्य के लक्षण संक्षेप में इस प्रकार है। एक, यह एक वृत्ताकार प्रकथन प्रधान काव्य है। दो, व्यक्ति की अपेक्षा इसमें जातीय भाव अधिक रहते हैं, इसमें प्रायः कोई बड़ा जातीय संघर्ष भी दिखाया जाता है। तीन, इसका विषय परंपरा से प्रतिष्ठा और लोकप्रिय होता है। चार, इसके पात्र शौर्य गुण प्रधान होते हैं, इनका संपर्क देवताओं से भी रहता है, उनके कार्यों की दिशा निर्धारित करने में देवताओं और नियति का हाथ रहता है। पृष्ठ 87। पांच, इसमें नायक को लेकर सारी कथा एक सूत्र रूप में बंधी रहती है। छह, इसकी शैली में एक विशेष प्रकार की शालीनता और उच्चता रहती है। सात, इसमें एक ही छंद का प्रयोग रहता है। इसके दो प्रकार माने गए हैं, एक प्राकृतिक अथवा जन साधारण संबंधी, जैसे वाल्मीकि रामायण, आल्हाखंड, होमर की इलियड, दूसरे कलात्मक जैसे रघुवंश, नैषद, कामायनी, पैराडाइज, लास्ट। किंतु भारतीय समीक्षा में ऐसा कोई अंतर नहीं किया गया है। तुलना और विवेचन। महाकाव्य के संबंध में भारतीय और पाश्चात्य आदर्शों में विशेष अंतर नहीं है। साहित्य दर्पण से उद्धृत किए गए महाकाव्य के लक्षणों में कुछ तो उसके संगठन से संबंध रखते हैं और कुछ नायक तथा रस से संबंधित है। पूर्वी और पश्चिमी दिनों दोनों ही आदर्शों के अनुकूल विषय में तथा नायक में शालीनता तथा महानता का प्रतिबंध रखा गया है। धीरोदत्त नायक में उदात्त भावनाओं का समावेश भले प्रकार होता ही है, आजकल यद्यपि कुलीनता पर विशेष बल नहीं दिया जाता है, तथापि महाकाव्यों में इतिहास प्रसिद्ध लोकप्रिय नायक होने से उनमें लोक रंजकता आ जाती है और साधारणीकरण या लोक हृदय में से संभावना अधिक हो जाती है। इतिहास प्रसिद्ध होने से एक लाभ यह है कि इसमें मानसिक दूरी का भाव आ जाता है, यह रस की बाधक बातों को दूर करने में सहायक होता है। अपने निकट के नायक में उनके दोषों का भी ज्ञान होता है और नायकों के चारों ओर एक दिव्य आभा चक्र उपस्थित कर देता है। आजकल दोनों का भी वर्णन वास्तविकता का अंग माना जाता है। पाश्चात्य आदर्शों में एक बात पर विशेष बल दिया गया है, वह यह कि महाकाव्य के नायक में व्यक्तित्व की अपेक्षा जातीयता का प्रतिनिधित्व अधिक रहता है। महाकाव्य वास्तव में जाति की ही वस्तु होती है, उसमें लोक रस कुछ बाहुल्य के साथ दिखाई देता है। हमारे यहाँ यद्यपि इस गुण का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, तथापि वह व्यंजित अवश्य है। नायक की श्रेष्ठता इतिहास सिद्धि, युद्ध यात्राओं आदि के वर्णन द्वारा महाकाव्य जातीय जीवन से संबंध हो जाता है। व्यवहार में भी महाकाव्यों में जातीय गुणों और जातीय मनोवृत्तियों का प्राधान्य मिलता है। वाल्मीकि रामायण में उसके वर्ण नायक के अपेक्षित गुण बताए गए हैं, वे गुण भारत की जातीय मनोवृत्ति के द्योतक हैं। रघुवंश के आरंभ में भी रघुवंशी राजाओं के उदात्त गुणों का उल्लेख किया गया है, यथा विधि हुताग्निनाम, यथा काम चित्तार्थानाम, यथा अपराध दंडानाम, यथा काल प्रबोधिनाम, त्यागाय संभ्रे तार्थानाम, सत्याय मित भाषणाम, यशसे विजी गीषणाम, प्रजाय गृह मेधिनाम। पृष्ठ 88। शैश्वे अभ्यस्त विद्यानाम, यौवने विषयवशी राम, वार्धके मुनि वृत्तानाम, योगेनांते तनुत्या जाम, रघुणा मन्यवम, वक्ष्ये तनुवाग्भी भवो अपि सन। रघुवंश भाग एक। अर्थात जो विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक यज्ञ हवन आदि करते थे, जो याचकों को उनकी कामना के अनुकूल थोड़ा सा देकर भगा नहीं देते थे, दान देते थे, जो अपराधियों को उनके अपराध के अनुकूल दंड देते थे और जो समय पर जागते थे, जो त्याग के लिए धन संचय करते थे, जो सत्य के लिए थोड़ा बोलते थे घमंड से नहीं, जो यश के लिए विजय की इच्छा रखते थे दूसरों के राज्य छीनने के लिए नहीं, जो पितृ ऋण के शोध के लिए विवाह करते थे विशेष रूप से कामोभोग के लिए नहीं, जो बाल्यकाल में विद्याभ्यास करते थे यौवन विषय भोग में लगाकर बुढ़ापे में मुनियों की वृत्ति धारण कर लेते थे, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर वन को चले जाते थे और अंत में योग द्वारा रोग द्वारा नहीं शरीर छोड़ते थे। ऐसे रघुवंशियों का मैं वर्णन करता हूँ, यद्यपि मेरे पास वाणी का वैभव बहुत थोड़ा है। इस वर्णन में भारतीय मनोवृत्ति का पूर्ण चित्रण आ गया है। आजकल के युग में कामायनी भी बुद्धि और श्रद्धा के समन्वय का भारतीय आदर्श दिखाई पड़ता है। गुप्त जी के राम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे आर्यों का आदर्श बताने तथा धन से जन को अधिक महत्ता देने आए हैं। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ बताने आया, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया। मैं आया उनके हेतु की जो तापित है, जो विवश विकल बल ही दीन शापित है, जो जाए हो जाए अभय वे, जिन्हें की भय भासित है, जो कौणव कुल से मूक सदृश शासित है। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रलय से मिटे न जीवन सादा, भव में नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। साकेत अष्टम सर्ग पृष्ठ 89। प्राचीन आदर्श के अनुकूल खल और सज्जनों के वर्णन जो महाकाव्य में अपेक्षित माने हैं, उसमें भी जातीय मनोवृत्ति तथा आदर्शों की झलक रहती है। इतना ही नहीं वरन उसमें एक मानवता का भाव रहता है। गोस्वामी जी ने सज्जनों का जो वर्णन किया है वह ऐसा ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकाव्य के भारतीय और पाश्चात्य आदर्शों में विशेष भेद नहीं है। दोनों ही आदर्शों के अनुकूल महाकाव्य का नायक उच्च कुलोद्भव तथा उदात्त विचारों का होता है। उसकी महान कृतियों, विजय यात्राओं और साहसपूर्ण कार्यों में जाति भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों का प्रकाशित होता है और नायक के द्वारा जातीय राजनैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान दिखाया जाता है। महाकाव्य आकार प्रकार से भी बड़ा होता है, उसके साथ उसकी शैली और उसका विषय दोनों ही गौरवपूर्ण होते हैं। महाकाव्य जाति की सांस्कृतिक चेतना के द्योतक होते हैं। महाकाव्य का कवि भी नायक की भांति स्वयं सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बन जाता है। महाकाव्यों में प्रायः दैव का भी हाथ रहता है, किंतु उस दैव के हस्तक्षेप द्वारा भी मानवीय गौरव की स्थापना हो जाती है। दैवी हस्तक्षेप के संबंध में पश्चिमी और पूर्वी आदर्शों में थोड़ा अंतर है। पश्चिमी महाकाव्य में विशेषकर यूनानी महाकाव्यों में दैव को ऐसी क्रूर सत्ता के रूप में दिखाया गया है जो मानव के उत्पीड़न में प्रसन्नता का अनुभव करती है। हमारे यहाँ मानव का उत्पीड़न चाहे परीक्षा के लिए हो, किंतु हृदय से देवता लोग सहानुभूति पूर्ण रहते हैं। हमारे यहाँ मनुष्य को सुख दुख भोगता है, वह अपने कर्मों के अनुकूल कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करा सो तस फल चाखा। इस दृष्टि से यदि देव की क्रूरता होती है तो वह अकारण नहीं होती। महाकाव्य का चित्रपट विस्तृत होते हुए भी उसके अंकन में एक विशेष अनवीति रहती है। वह अनवीति चाहे नायक के व्यक्तित्व में के द्वारा, चाहे लक्ष्य की एकता के द्वारा संपादित की जाए। महाकाव्य के प्राचीन और वर्तमान आदर्शों में थोड़ा बहुत अंतर पड़ गया है। अब मंगलाचरण इत्यादि की आवश्यकता नहीं समझी जाती और न किन्ही मांगल्य सूचक शब्दों का रखना नितांत आवश्यक है। गुप्त जी ने साकेत के प्रत्येक सर्ग में मंगलाचरण किया है। प्राचीन काल में भी इस नियम का बहुत कड़ाई के साथ पालन नहीं होता था। महाकवि कालिदास के कुमार संभव में कोई मंगलाचरण नहीं है, उसमें हिमालय का वर्णन अवश्य है जो विशालता का द्योतक है। कुमार संभव पूर्ण नहीं हुआ, चाहे देवताओं के श्रृंगार वर्णन के दोष के कारण हो, चाहे मंगलाचरण के अभाव के कारण हो। प्रेम प्रवास का आरंभ दिवस के अवसान से होता है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था, कुछ लोहित हो चला, केवल इसलिए हम उसको निंदनीय नहीं कहेंगे। इसका इस प्रकार समर्थन भी किया गया है कि दिवस शब्द मांगल्य सूचक है और अवसान शब्द से उसके विरह काव्य होने का निर्देश मिलता है। आजकल पृष्ठ 90 नायक के संबंध में भी थोड़ी शिथिलता आ गई है। कामायनी में नायक तो मनु है किंतु प्राधान्य श्रद्धा है। नायक शब्द में नायिका भी शामिल की जा सकती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि महाकाव्य वह विषय प्रधान काव्य है जिसमें की अपेक्षाकृत बड़े आकार में जाति की प्रतिष्ठा और लोकप्रिय नायक के उदात्त कार्यों द्वारा जाति भावनाओं आदर्शों और आकांक्षाओं का उद्घाटन किया जाता है।